यह स्वानुभावमखिलम्, क्षमा कीजिए, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम्, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम्, अध्यात्मदीपमतिति त्रिशतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतिति त्रिशतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतिति त्रिशतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, बोलिए, यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्,
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्,
तं
व्याससूनुमुपयामि गुरुं
मुनीनां,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से प्रस्थापित बुधवार ये भागवत सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम, जिसे अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है, यह श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने निज धाम गोलोक वृंदावन जब जा रहे थे, तभी संसार के और उद्धव जी के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण इसी भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। उद्धव जी से कहा कि अब धर्मम क शरणम गत, 88,000 ऋषि मुनि का जो प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के धराधाम से चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम में आते हैं। भगवान जब तक रहते हैं तब तक धर्म बना रहता है, भगवान जब चले जाते हैं तब धर्मम क शरणम गत, धर्म किसकी शरण में गया? तो साक्षात भगवान इस भागवत में प्रविष्ट हुए, इसका अर्थ हुआ धर्म श्रीमद् भागवतम की शरण में गया। श्रीमद् भागवतम एक धर्म ग्रंथ है और यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह भगवान का वांगमयी स्वरूप है। इसलिए बड़े बड़े महर्षि लोग इस भागवतम को भगवान का रूप ही मानते हैं। मैनिरे भगवत रूप शास्त्रम भागवतम कलो पाठना श्रवणा सद्य वैकुंठ फल कामदम। और अगर कोई व्यक्ति यह श्रीमद् भागवतम का पठन करता है या श्रवण करता है तो सद्य तुरंत वैकुंठ फल कामदम, तुरंत वैकुंठ भगवान का धाम उसे प्राप्त हो सकता है। भगवान का धाम तुरंत प्राप्त कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वह श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके हम भगवान के धाम को सद्य तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और भागवतम के प्रारंभ में तो यहां तक कहा गया है सद्य ही अवरुद्य तेत कृति भी, भागवत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा करता है, इच्छा करने मात्र से सद्य ही अवरुद्य तेत कृति भी सुश्रुष भी तत्क्षणात, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थित हो जाए। माइक ठीक कीजिए, माइक बदलने वाला कोई नहीं है, ये कितने दिनों से इस प्रकार से मृदंग नहीं है, माइक नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे
तुरंत उसे निकाल दीजिए, थोड़ा जल्द ज्यादा हिलाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम।
ये माइक में तकलीफ नहीं, वायर में तकलीफ, वायर छोटा है, नया वायर छोटा है, इधर नहीं वो नहीं। नहीं होगा, हरे कृष्ण छोड़िए, नया जो आया वो नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे, हरे राम
तो तुरंत भगवान का धाम प्राप्त कराने वाला यह ग्रंथ है। ऐसी भक्तिवेदांत हरे कृष्णा वायर में खराब है, महीना पहला विचारों नो तू मायर वायर में खराब है, टेप में पण खराब होय छे। हरे कृष्ण वॉल्यूम में पण खराब होय, हलावीने ऊपर कर। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे, हरे राम
राम राम। हरे कृष्ण तीन जन बैठे हैं वहां पर वायर पकड़ कर। ठीक है, अरे हरे कृष्ण, एक जन ऊपर बैठ जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सिखाऊं मैं आपको, अगरबत्ती जो है ना उसकी कांडी लीजिए और उस बीच में डाल दीजिए ताकि फिक्स हो जाए। करो जल्दी, हम ही वक्ता है, हमें मैकेनिक है। कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम यहाँ पर केवल 100-150 जन बैठे हैं, बिना माइक के नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जिस कथा में बोल रहे थे उस कथा में हजारों लाखों लोग बैठे थे और बिना माइक के बोल रहे थे और फिर भी सब लोग सुन रहे थे। आश्चर्य लगता है। कुछ कुछ लोग तो प्रश्न भी पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों, यहाँ पर बिना माइक के कोई समझ नहीं सकते हैं और वहां पर सुखदेव गोस्वामी कैसी कथा कहे होंगे, चिल्ला चिल्ला कर कथा कहे होंगे। तो उसका उत्तर देते हुए महात्मा गण कहते हैं कि उस वक्त सुखदेव गोस्वामी का आवाज मेघ निर्हृदया गिरा मेघ के समान था। जब बारिश आती और मेघ जब बरसता है गरजता है तब उसे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती, सब जगह पर एक सरीखा आवाज आता है। तो कुछ मूर्ख पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी के नजदीक बैठने वाले के तो कान फट जाते होंगे। लेकिन भगवान की कृपा से सब लोगों को एक सरीखा आवाज आता था। और हम कलयुग के वक्ता की हालत देखिए, थोड़ा 5 मिनट के लिए भी माइक बिगड़ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर, ये भौतिक उपकरणों को भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। ये वैज्ञानिक लोग भी बहुत सहायता कर रहे हैं हमें। ठीक, मैं देख रहा था बंद नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ी भौतिक बातें। तो यह भागवत भगवान में प्रीति और भगवान का धाम सद्य तुरंत दिनाने वाला यह ग्रंथ है। तो इसी भागवत का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इसका श्रेय जाता है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी की कृपा से यह भागवत हमें प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी नहीं होते तो यह भागवत हमसे हजारों किलोमीटर दूर होता। प्रभुपाद जी ने दिया है यह भागवत हमें, तो आइए प्रभुपाद जी की अनुकंपा का हम लाभ उठाएं। हमारे सामने श्रीमद् भागवतम के 2 अध्याय का 3रा श्लोक है। कथा तो आप सब जानते हैं, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, 6 प्रश्न पूछे शुद्ध गोस्वामी को और शुद्ध गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछने के बाद श्रीमद् भागवतम के 1 स्कंद के या 2 अध्याय में शुद्ध गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों के 6 प्रश्न में शुद्ध गोस्वामी को साक्षात भागवत का ही उपदेश उत्तर देना था। तो शुद्ध गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले 3 श्लोक में प्रार्थना करते हैं। शुद्ध गोस्वामी के गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं, इसलिए शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की लीला याद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि श्रोता हैं, शिष्य हैं और शुद्ध गोस्वामी गुरु हैं। महात्मा गण और वेदों में गुरु के लक्षण बताए गए हैं। गुरु का सबसे बड़ा लक्षण है कीबा विप्र कीबा न्यासी केने शूद्र नहीं ऐ कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। गुरु चाहे शूद्र हो या ब्राह्मण हो, किसी भी जाति पाति का क्यों न हो, अगर वह कृष्ण को तत्व से जानता है, कृष्ण का भक्त है, तो वह गुरु बनने के गुरु बनाने के योग्य है। गुरु की सबसे पहली योग्यता यह है कि वह कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो कृष्ण का भक्त ही गुरु बन सकता है, गुरु कहला सकता है। तो भक्ति जो है ये गुरु का सबसे पहला गुण है। और भक्ति के दो पुत्र हैं, जानते हैं? भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य उनमें ऑटोमेटिक आने लगते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य ये दो गुण उस गुरु में होने चाहिए, अर्थात भक्ति। तो सुध गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण करते हुए यह पहले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में वैराग्य का वर्णन किए। किस प्रकार मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी जन्म लेकर वैराग्य ले लिए, वन में निकल पड़े, भाग गए। तो मंगलाचरण के पहले श्लोक में वैराग्य का वर्णन किए और अब इस श्लोक में मेरे गुरु, हमारे गुरु सुखदेव गोस्वामी कितने ज्ञानी हैं और उन्होंने जो हमें प्रदान किया है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुध गोस्वामी अपने गुरु का मंगलाचरण करते हुए प्रार्थना, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए कहते हैं, यह स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम। यह जो स्व अनुभाव, हमारे गुरुजी ने हमें क्या प्रदान किया है, सुखदेव गोस्वामी ने मुझे क्या दिया है, कहते हैं स्व अनुभावम, अपना स्वभाव अनुभव, स्वभाव अनुभव करने वाला ग्रंथ प्रदान किया है। यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है वह स्वभाव का अनुभव कराता है, स्वभाव का। वास्तव में हमारा स्वभाव बहुत विपरीत है और हम बहुत विपरीत स्वभाव में काम कर रहे हैं। इस जीव का स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। यह जीव का स्वभाव है भगवान का दास, दास बनकर रहना और भगवान को स्वामी मानना। लेकिन अगर यह जीव इस प्रकार से ज्ञान नहीं रखता है, यह नहीं समझता है, तब इस दुनिया की फजीहत में फंस जाता है। इस दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि जीव अपने स्वभाव को नहीं जान पाया है। मुझे यहां से सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, भागते दौड़ते रहता है, सुख ढूंढते रहता है, लेकिन सबसे पहले अपना ही स्वभाव नहीं जाना है तो कैसे वह दुखों से मुक्त होगा। जब मैं मनन कर रहा था तब एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मुझे याद आया। जीव दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपना स्वभाव भूल गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को यात्रा करनी है, यहां से चर्चगेट जाना है, स्टेशन पर खड़ा है और स्टेशन पर खड़े रहकर अपना स्वभाव भूल जाए, वह भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, वह भूल जाए कि मैं पुरुष हूं और लेडीज डब्बे में चढ़ जाए, तब उसकी क्या हालत होगी? पीटेंगे वह लेडीज और ऊपर से वह पुलिस डांटेंगे, टीसी पकड़ेंगे, चारों ओर से दुख दुख ही करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, सब कुछ होगा। वही हालत इस संसार के जीव की है। जैसे वह अपना स्वभाव प्लेटफॉर्म पर ऊपर खड़े रहकर भूल कर दुख भोगेगा, ठीक उसी प्रकार इस संसार में आकर जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हुए इस संसार में माया के द्वारा दुखी और दंडित होते रहता है, क्योंकि जीव अपना स्वभाव नहीं जानता है। जीव का स्वभाव है दास बनकर रहना। ये जीव जो है एक दास है और दास का स्वभाव क्या होता है? सेवा करना होता है कि नहीं? दास का स्वभाव होता है सेवा करना। आप देखेंगे इस संसार का जीव किसी ना किसी की सेवा निश्चित रूप से करता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सेवा नहीं करता है। कोई व्यक्ति अपने पत्नी की सेवा करता है तो कुछ लोग अपने पुत्र की सेवा करते हैं, विवाह नहीं हुए हैं तो अपने गर्लफ्रेंड की सेवा करते हैं। हमने तो देखा कल या परसों फ्रेंडशिप डे था और दुर्भाग्यवश हम घर से ऑफिस जाने के लिए जब निकलते हैं तो बीच में ही कॉलेज पड़ती है, सारा दृश्य देखने मिलता है। तो कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड की या अपने मित्र की सेवा कर, सेवा निश्चित रूप से सब लोग करते हैं। कुछ लोग नौकरी करने वाले अपने बॉस की सेवा करते हैं। अगर किसी भी की किसी की भी व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो अपने शरीर की तो सेवा में लगा ही है। रोज सुबह से धोता है, साफ करता है, साबुन तेल शैंपू इत्यादि सब कुछ लगाता है। संसार का जीव बिना सेवा किए नहीं रह सकता है, क्योंकि यह जीव का स्वभाव है सेवा करना। बिना सेवा किए जीव नहीं रहता। कोई है ऐसा जीव जो बिना सेवा किए जी रहा है? कोई नहीं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं। तो प्रश्न होता है क्यों जीव सेवा कर रहा है? पहली बात, जीव का स्वभाव है सेवा करना और उस सेवा में उसे कुछ ना कुछ आनंद और रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए सेवा कर रहा है। फोकट की कोई सेवा नहीं करता है। कोई करता है? कोई नहीं। अगर कुछ स्वार्थ थोड़ा कहीं ना कहीं वह रस देख रहा है कि यहां से कुछ मिलेगा, फिर भले नहीं मिलता है, बहुत बहुत प्लान मारता है, सेवा करता है, मेहनत करता है, फिर जाकर कुछ नहीं मिलता है वह दूसरी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ रस प्राप्त करने के लिए वह सेवा कर रहा है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह सेवा करता रहता है रस की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसे पूर्ण रस प्रदान नहीं होता है। मिलता भी है तो एक बूंद, और बूंद का भी सोवा हिस्सा सीकर के जितना रस प्राप्त होता है, क्योंकि वह इस संसार के भौतिक लोगों की सेवा कर रहा है और मृत्यु तक वह सेवा करता है और मृत्यु के बाद नरक में चला जाता है और ढूंढता रहता है सेवा, क्योंकि सेवा करना उसका स्वभाव है और वह दास है और सेवा में उसे सुख मिल रहा है। तो समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, अपने पुत्र पत्नी की सेवा करता है, इस प्रकार से कई कई लोगों की सेवा करता रहता है, फिर भी सुख नहीं मिलता है। जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जीव की सेवा, किसी भी भौतिक जगत के भौतिक जीव की सेवा करने उसे बहुत ही कम रस प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की सेवा जब जीव करने लगे तब उसे रस नहीं रसामृत सिंधु का प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसलिए भक्तेर सामृत सिंधु नाम ही दिया है रूप गोस्वामी ने। भगवान की सेवा करने में समुद्र में जितना पानी है उतना रस प्राप्त आनंद प्राप्त होता है। तो वास्तव में जीव का स्वभाव है दास बनकर रहना, और जब तक वह माया का दास है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। जब तक वह जब वह भगवान का दास बन जाता है तब सुख प्राप्त करता है और भगवान की प्राप्ति करता है। तो जीव इस संसार में सभी लोगों के जीवन में दुख तब तक है जब तक वह भगवान की सेवा नहीं करता है। भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दी तो दुख सारे मिट जाते हैं। तो यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है यह स्व अनुभावम अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है, अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कराने वाला यह ग्रंथ मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने मुझे दिया है, इसलिए मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 और यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अखिल श्रुति सारम, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रुति का अर्थ होता है व्यास देव जी ने जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण लिखे, ये सभी श्रुति का सार है यह श्रीमद् भागवतम। इसलिए व्यास देव जी ने प्रारंभ में ही लिखा, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखा दय अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्प तरु, यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सभी वेद और शास्त्रों का पका हुआ फल सार रूप में है। तो सभी शास्त्रों का यह सार देने वाले सुखदेव गोस्वामी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कैसा है यह ग्रंथ? तो कहते तमो अंधम तितीर्षताम संसारिणाम एकम अध्यात्म दीपम। इस संसार में सब लोग तमह तम अंधकार रूपी अज्ञान में फंसे हुए हैं, और अज्ञान के कारण ही इस संसार का जीव अपना स्वरूप भूला हुआ है और दुख भोगत रहा है। तम केवल अज्ञान के कारण, शास्त्र में अज्ञान की उपमा अंधकार से दी गई है। तो अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण इस संसार के लोग दुख में पड़े हुए। अगर ज्ञान हो जाए तो ये सारा दुख निकल सकता है, लेकिन अज्ञान है। प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर पे हो और लाइट चली गई है और छत पर रस्सी लटक रही है, और रस्सी की जो परछाई है उसे अगर कोई सर्प समझ ले तो व्यक्ति पसीना पसीना दुखी हो जाएगा। वास्तव में दुख नहीं है, वह रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण उसे पता नहीं चल रहा है कि यह रस्सी है या सर्प है। तो यह अज्ञान, यह दुख तब तक रहता है जब तक लाइट न आ जाए। ठीक उसी प्रकार जब तक इस संसार को जीव पहचानता नहीं है तब तक दुख है, जब ज्ञान रूपी उजाला आ जाता है तब इस संसार का दुख चला जाता है। तो इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो तमह में, अंधकार में, अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो उन लोगों में से कुछ कुछ लोग यह मानते हैं कि हम अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, यह मानते हैं कि हम अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन ज्यादातर कुछ लोग तो यहां तक ही सोचते हैं कि हम तो परम सुखी हैं। यह जगत बनाने वाले ने कहा है कि यह जगत दुखालय शास्त्र, इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मूर्ख लोगों की भी कमी नहीं है, वो कहते हैं कि इस संसार में हम सुखी होकर रह रहे हैं, हम तो सुखी हैं, केम छो मजामा। गुजराती भाई लोग जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं केम छो मजामा। अब कितने मजे में हो वो तो यहाँ पर बैठने वाला परमात्मा ही जानता है। कैसे हो, ठीक हो ना? कोई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए तो इस संसार में रह रहे हैं। ठीक होते तो भगवान के धाम में आराम से नहीं बैठते। ठीक कोई नहीं है। और जो व्यक्ति मानता है कि मैं ठीक नहीं हूं, ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी है। लेकिन मूर्ख लोग तो यह जानते हैं कि हम इस संसार में रहकर सुखी है, कोई टेंशन कुछ नहीं, ये सबसे बड़े मूर्ख। रजोधिका कर्मपरा दुखे च सुख मानी न, दुखों के सागर में रहते हुए कोई सोचे कि दुख तो मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है, मैं सुखी हूं। जैसे समुद्र के बीच में खड़ा रहकर कोई सोचे यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। तो दुखालय संसार में रहकर कोई सोचे कि मैं सुखी हूं, बड़ा मूर्ख। प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, ऐसे सोचने वाले ऊंट के समान है। ऊंट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंट ही कहते हैं। बहुत लंबा डोक वाला रहता है। तो वे जो ऊंट, जब ऊंट का आहार क्या है पता है? पत्ते खाता है, पेड़ के पत्ते खाता है, और उस पेड़ के पत्तों में उसे बहुत रस मिलता है, आनंद, यार मजा आ गया। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता है पेड़ के पत्तों में कुछ रस नहीं है, पेड़ के पत्तों के साथ कुछ कांटे लगे हैं, और वह कांटे मुंह में लग रहे हैं, और मुंह में लगने से मुंह से खून निकल रहा है, तो पत्ते के साथ खून वह पी रहा है, खा रहा है, इसलिए उसे थोड़ा टेस्ट आ रहा है। लेकिन मूर्ख यह सोच रहा है कि इस पेड़ के पत्ते में टेस्ट आ रहा है। अब यही हालत इस संसार के मूर्खों की है। वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, लेकिन दुख कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाते हैं। दुख निवृत्ति की स्थिति को ये मूर्ख लोग सुख समझ लेते हैं, दुख निवृत्ति की स्थिति को सुख समझ लेते हैं, वास्तव में सुख नहीं है। यहां पर भगवद गीता कोर्स था, वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, थे सब लोग। अभी अभी मैं बांद्रा से आया ट्रेन से चढ़कर, आपको पता होगा जो जानते हैं, 8:15 बांद्रा से चढ़ना मतलब अग्नि परीक्षा से पसार होना। क्योंकि ट्रेन चर्च गेट से पूरी भरी हुई आती है और उसमें धोती कुर्ता पहनकर चढ़ना तो यही बोल रहा था भाई, धक्का दो जितना चाहे उतना धक्का दो, लेकिन धोती मत निकाल देना तो ट्रेन का दृष्टांत अगर हम ले तो मान लीजिए कोई व्यक्ति विराट यहाँ दहीसर में आना है चर्च गेट से और विरार ट्रेन में चढ़ा है बांद्रा से, चर्च गेट से चढ़ा होता तो गेट पकड़ कर बेचारा आ जाता हवा खाते हुए, लेकिन बांद्रा से पूरी पैक भरी हुई ट्रेन आती है और उस ट्रेन में बांद्रा से चढ़ा हुआ कैसे भी करके चढ़ करके पूरी गर्दी में पसीना आजू, यहाँ से एक धक्का दे रहा है, वहां से ये गाली दे रहा है, पीछे से आगे पीछे सब धक्का है, पसीना है, पंखे भी बंद है, गर्मी की ऋतु है और पसीने से लथपथ बेचारा दुखी, नरक का अनुभव कर लेता है। और वास्तव में करना है वो चलिए ट्रेन में हमारे साथ, बिल्कुल नरक का अनुभव। बांद्रा जाता है फिर अंधेरी, अंधेरी के बाद बोरीवली, आधा पौना घंटा जब निकल जाता है और सांस भी रुनने लगता है, गर्मी इतनी होती है, और जब दहीसर आता है तो उतरने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है, केवल रास्ते में खड़े रह जाइए, बस पीछे से धक्का आया आप उतर जाएंगे। तो दहीसर आया और इतनी गर्मी से जब उसे बाहर धकेला जाता है और स्टेशन पर जब आकर यार मजा आ गया सुख मिल गया, आनंद आ गया, दुनिया का स्वर्ग का सुख मिल गया। मूर्ख लोग इसे सुख मान लेते हैं लेकिन वास्तव में ये सुख है। पौने घंटे से दुख दिया जा रहा था, उस पौने घंटे से जो दुख दिया जा रहा था उसे बंद किया गया, तो जो दुख को निवृत्त दुख को बंद करने की स्थिति को सुख मान बैठते हैं। ये हालत इस संसार की, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विचार करते हैं, वह सोचते हैं कि वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है, अगर सुखी होना है तो इस संसार के परे आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप करके इस संसार में सुखी हो सकते हैं और मृत्यु के बाद हम सुखी हो सकते हैं। तो जो लोग इस संसार में सुखी होना चाहते हैं उसके लिए, जो लोग मानते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में हैं, तो अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए हमारे गुरु, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने एक आध्यात्म दीपक दिया है, टॉर्च दिया है। इस संसार में जो लोग अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं उन लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने एक आध्यात्मिक टॉर्च दी है, आध्यात्मिक दीपक लिखा है, भौतिक टॉर्च नहीं, क्योंकि भौतिक टॉर्च से केवल रास्ता देखा जाता है, रास्ता भी ठीक से नहीं दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक टॉर्च रूपी यह श्रीमद् भागवतम जो हमारे गुरु ने दिया है वो बिल्कुल भगवान के धाम को प्रकाशित करता है, और इस टॉर्च को लेकर, यह श्रीमद् भागवतम को लेकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं सुखदेव गोस्वामी के चरणों में सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यह आध्यात्मिक टॉर्च यशिमद भागवतम कैसा है तो कहते हैं अखिल अखिल श्रुति सारम, अर्थात समस्त ग्रंथों में सबसे ऊपरी ग्रंथ, समस्त ग्रंथों में का सार है यह ग्रंथ। आगे सुख गोस्वामी कहते हैं पुराण गुह्यम, जिस सुखदेव गोस्वामी ने मुझे यह गुह्य पुराण कहा है ऐसे सुखदेव गोस्वामी का मैं को प्रणाम करता हूं। यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है पुराण गुह्यम है। पुराण गुह्यम का अर्थ होता है पुराणों में, वेद और शास्त्रों में कुछ कुछ बातें बहुत गुह्य रखी गई है। गीता में भी भगवान कहते हैं भक्तो सिमे सखा चेती रहस्यम हेत दुत्तमम, कौन सा श्लोक है, भक्तो सिमे सखा चेती रहस्यम, हे अर्जुन मैं तुम्हें रहस्य की बात बताने जा रहा हूं, मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूं। और मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो वेद शास्त्र और पुराणों में कुछ कुछ बातें बहुत गुह्य है, और यह गुह्य बात क्या है, गुह्य बात यह है, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करना यह सबसे बड़ी गुह्य बात है। भगवान गीता में अर्जुन से कहे हैं, गुह्य बात बताते हुए कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो, मेरा मनन करना, मेरी भक्ति करना, मध्या जिमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करना, मेरी पूजा करना, यही है सबसे बड़ी रहस्यमय बात। संसार में सब लोग मुझे प्राप्त करने के लिए हवन यज्ञ, एक पैर पर खड़ा रहते हैं, नंगा चलते हैं, तपस्या करते हैं, और बहुत बहुत करने के बाद भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुह्य रहस्यमय बात मैं तुम्हें अर्जुन बता रहा हूं कि मुझे आसानी से अगर प्राप्त करना है तो केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, यह है सबसे बड़ी रहस्यमय बात, गुह्य बात। तो यह रहस्य, यह गुह्य पुराणों को कहने वाले सुखदेव गोस्वामी के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। और सुखदेव गोस्वामी ने यह गुह्य बात इसलिए की क्योंकि उनमें करुणा का गुण था, कारुण्य आह। अब करुणा, हृदय करुणा से भरकर उन्होंने यह भागवत मुझे सुनाया है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों में, महापुरुषों में यह कारुण्य का गुण होता है, क्योंकि यह कारुण्य का गुण भगवान में भी है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, तो करुणा के सागर की अगर कोई भक्ति करता है तो सागर की बूंद तो आनी ही है उनमें। कृष्ण करुणा के सागर है, और ऐसे करुणा के सागर की भक्ति करने वालों के में भी यह कारुण्य का गुण आ जाता है। और करुणा के वश होकर भगवान के भक्त महापुरुषगण स्वयं तो भक्ति करते हैं, लेकिन करुणा करके इस संसार के जीवों को भक्ति में लगाते हैं, यह है उनकी करुणा। भक्ति करना कोई करुणा नहीं है, भक्ति कर लेना, अपनी साधना, सोलामाला, जप, चार नियम कर लेना, यह तो एक स्वार्थ की भावना है कि यह गुह्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और केवल हम तक सीमित रखें। लेकिन जब महापुरुष स्वयं आचरण करके, स्वयं भक्ति करके, साधना करके यह दूसरों को भी साधना में लगाए, उसे करुणा कही जाती है। यह है करुणा का गुण। तो भगवान में करुणा का गुण है, इसलिए यह करुणा का गुण भक्तों में भी आया है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है भगवान से भी ज्यादा यह करुणा का गुण भक्तों में देखा गया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान, यद्यपि भगवान करुणा के सागर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों से कम है यह देखा गया है। क्योंकि भगवान वेद और शास्त्रों में लिख कर दे देते हैं कि जाओ एक पढ़ लो और मेरे भक्ति करो और मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। समझाने के लिए थोड़ी ना आते हैं। हजारों हजारों जन्मों से, हजारों हजारों कालों से भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, लेकिन कभी बाहर आकर बोले कि प्रभु आप एक माला का जप करो, लेकिन फिर भी करुणा सिंधु है। धन्य है भगवान के भक्त। परमात्मा सबके हृदय में है, सबके साथ अनंत अनंत काल से है, लेकिन फिर भी एक बार भी यह नहीं कहे कि एक बार माला का जप कर लो, नहीं कहे। और जीव पर कृपा करके एक बार द्वापर में आ भी गए, कुरुक्षेत्र की भूमि में यह ज्ञान देने भी चले तो केवल अर्जुन को दिया। सबको देना चाहिए, माइक में, लाउड स्पीकर में बोलकर सबको प्रचार करना चाहिए इस रहस्यमय ज्ञान का, तो कहते अर्जुन केवल तुमको, दूसरों को नहीं, केवल तुमको दे रहा हूं, दूसरों को मत देना। अर्जुन की इच्छा थी आगे चलकर मैं दूसरों को बताऊंगा, लेकिन अंत में कह दिया यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशु, दूसरों को मत देना, मेरे भक्तों को ही देना ये गीता का ज्ञान। फिर भी करुणा सिंधु। अर्जुन की इच्छा थी कि ये गीता जो मैंने सुनी है मैं प्रचार करूंगा, लेकिन भगवान ने गीता के अंत में कह दिया कि यह इदम परमम गुह्यम, यह गुह्य ज्ञान सब लोगों को मत कहना, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो पापी है, ऐसे लोगों के मत जा, को पास मत जाना, केवल भक्तों के बीच में इसकी चर्चा करना। लो यहाँ पर भी भगवान ने स्टॉप लगा दिया। लेकिन धन्य है भगवान के वे भक्त जो भगवान की करुणा को भी लांघ गए हैं। धन्य है ऐसे आचार्य महापुरुष, धन्य है प्रभुपाद जी जो भगवान की इस करुणा को लांघ कर समुद्र से भी बड़ा दिल रखकर इस संसार के अश्रद्धालु पापी तापी सबसे गिरे से गिरे हुए व्यक्ति को भी भगवत गीता और भागवत का ज्ञान प्रदान किया। धन्य है भगवान की करुणा को भी छोटी करने वाले हैं भगवान के भक्त। यद्यपि भगवान ने क्लियर कहा है कि अश्रद्धालु को ज्ञान मत देना, लेकिन भगवान के भक्त के हृदय में भगवान से भी ज्यादा करुणा होती है, इसलिए भगवान के इस गुण को भी लांघ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में, अब 70 साल की आयु में बूढ़ा क्या कर सकता है, या तो वह हॉस्पिटल में होगा या तो घर पर किसी बेड में आराम करता होगा। लेकिन 70 साल की आयु में एक संत सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा और इस गीता और भागवत का प्रचार करूंगा। हमारे संस्था के आचार्य प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में सोचे कि इस भारत के लोग यह गीता और भागवत का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सरल सुलभ हो चुका है। जो चीज सरल सुलभ हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और भारत के लोग सोचते हैं कि इंपोर्टेड चीज चाहिए, इंपोर्टेड चाहिए। दुकान में भी जाते तो इंपोर्टेड है तो ही देना। प्रभुपाद जी ने सोचा कि लोग इंपोर्टेड चीज पसंद करते हैं, इसलिए इस गीता और भागवत को इंपोर्टेड बनाना होगा। बिना इंपोर्टेड बनाए ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी सोचे यह मिशन इस संसार का, इस दुनिया का सबसे बड़ा देश जो प्रगतिशील है, भारत से 10 साल आगे है, ऐसे अमेरिका से इसको प्रारंभ करना होगा, तब जाकर ये भारत वाले लोग मानेंगे और उन लोगों का उद्धार होगा। और 70 साल की आयु में एक संत सोच रहे थे कि इस भागवत और गीता के ज्ञान को लेकर जाऊंगा, और वे गए। यद्यपि उसके पास धन नहीं था, केवल 40 रुपये लेकर, 40 रुपये लेकर आप गांव में यहां से चर्च गेट भी नहीं जा सकते हैं, 36 रुपया तो टिकट होती है। लेकिन एक संत 70 साल की आयु में केवल 40 रुपया लेकर कार्गो शिप में बैठकर यहां से अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए, और अमेरिका जाने के बीच में उसको 2 बार हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक जानते हैं, 3 बार आने पर व्यक्ति मर जाता है। 2 बार उस संत को हार्ट अटैक आया, फिर भी हिम्मत से नहीं हारे। उन्होंने लिखा है जब उसे 2 हार्ट अटैक आए तब उस बोट में रहकर उन्होंने एक भजन लिखा है, बड़ो कृपा कहले कृष्ण अध मेरे प्रति, हे कृष्ण आपने बहुत बड़ी कृपा की है इस जीव पर। प्रभुपाद के मन में संशय भी आया कि मैं किस प्रकार इस 2400 घंटा नशा में पड़े रहने वाले लोगों को भक्ति में लगाऊंगा। ये भजन लिखते लिखते प्रभुपाद जी को विचार आया, तब प्रभुपाद जी के मन में यह संशय दूर हुआ जब उसे भागवत की याद आई। प्रभुपाद जी ने सोचा मेरे साथ भागवत है, और भागवत के कारण शुण्वताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्लोक कीर्तन, भगवान की पुण्य श्लोक भगवान की लीला सुनने से ये लोग का जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सोचकर और भगवान को प्रार्थना किए कि प्रभु मैं तो आपके हाथ की एक कठपुतली हूं, आपको जैसे नचाना हो वैसे नचाइए। प्रभुपाद जी नहीं जानते थे अमेरिका में कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ से अगर हमें कलकत्ता भी जाना है तो यहाँ से फोन करते हैं, ये होटल बुक है, यहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर उतरना है, ये करना है, वो करना है। एक संत जो जीवन में पहली बार अमेरिका गए, कहाँ उतरना है, कहाँ से शुरू करना है, कुछ नहीं पता था। हाथ में एक अटैची थी, एक जोड़ी करताल थे, 40 रुपया केवल था उसके हाथ, डॉलर नहीं 40 रुपये थे भारत के। और अमेरिका में उतर कर एक पेड़ के नीचे बैठकर करताल के साथ हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किए। सबसे पहले अमेरिका के लोग, और अमेरिका में न्यूयॉर्क जो सबसे कामी सिटी माना जाता है, उस न्यूयॉर्क के लोग देखने लगे ये बूढ़ा क्या पागलपन कर रहा है, समझ नहीं पाए। अब भारत के लोग जिसे नहीं समझ पाए, अमेरिका के लोग कहां से समझेंगे। लेकिन पवित्रता इतनी मजबूत थी प्रभुपाद जी में कि वे महामंत्र बंद नहीं किए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन सब लोग ये सुनने लगे, धीरे धीरे क्लियर होता गया, अरे ये तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे।
तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे, करताल बजाते थे, और वहां से कई सारे लोग शराब पीते हुए, किसी लड़कियों के साथ घूमते घूमते नशे में, कुछ कुछ लोग तो नशे में घूमते घूमते यहाँ पर आकर गिरते थे, बैठते थे। तो इस प्रकार से 2400 घंटा नशे में पड़े रहने वाले लोग भी प्रभुपाद जी की पवित्रता के कारण प्रभुपाद जी के मुख से महामंत्र सुनने लगे। और जैसे जैसे महामंत्र सुनने लगे, जो जो लोग 2400 घंटा शराब के नशे में रहते थे, वह धीरे धीरे इस हरे कृष्ण महामंत्र के नशे में रहने लगे। इतना ही नहीं, स्वयं तो 2400 घंटा महामंत्र के नशे में रहे, इतना ही नहीं पूरी दुनिया को महामंत्र के नशे में यह सब लोगों ने नचा दिया प्रभुपाद जी के साथ। यह है प्रभुपाद जी का, एक संत का कारुण्य का फल। और उस अमेरिका से आज से करीबन 30 साल पहले उस अमेरिका में न्यूयॉर्क में इस्कॉन संस्था की स्थापना नींव डाली प्रभुपाद जी ने। और आज 30 साल और एक दिन पूर्ण हुए हैं इस इस्कॉन संस्था के। कल के दिन प्रभुपाद जी ने नींव डाली थी इस्कॉन की, और वहां से इस्कॉन संस्था प्रारंभ हुई। कुछ लोग कहते हैं यह इस्कॉन, यह आपका धर्म तो फॉरेन का है। अरे भाई, यह धर्म फॉरेन का नहीं है, इसकी नींव फॉरेन से डाली है, बाकी यह धर्म का आधार जो है वह श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। और भगवत गीता और भागवत के आधार पर आज इस संसार के लाखों लाखों लोग भगवान के भक्त बने। कई कई किलो टन मटन खा कर जो अपना जीवन बिता रहे थे, वे लोग आज महामंत्र जपकर भागवत पढ़कर ब्राह्मण बन चुके हैं, और भारत के ब्राह्मण म्लेच्छ बन गए हैं। बहुत दुख की बात है। प्रभुपाद जी की संस्था में आप देखेंगे फॉरेन के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो भगवान को कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज उन्होंने मंदिर में आने लगे, सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनकर एक लज्जाजनक बात यह है कि फॉरेन अमेरिका में जन्म लेकर वे लोग आज भारत के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। इतना सांस्कृतिक देश होते हुए भी भागवत का अवतरण इस देश में हुआ, भगवान का अवतरण इस देश में हुआ, लेकिन दूसरे देश के लोग इस देश को दीक्षा दे रहे हैं। ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा का फल है, प्रभुपाद जी की करुणा का फल है यह। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें यह करुणा होती है। तो यहां पर सूद गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने करुणा के भाव से अपना हृदय द्रवित करके करुणा के भाव में यह भागवत कथा मुझे सुनाई, इसलिए मैं उस सुखदेव गोस्वामी के चरणों में सादर वंदन करता हूं। तम व्यास सुनु मुपयामी गुरु मुनिनाम, ऐसे व्यास देव के सूत, व्यास देव के पुत्र गुरु मुनिनाम, जो मुनियों के गुरु हैं, उसे मैं प्रणाम करता हूं। इसके पहले श्लोक में क्या कहे, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानम तस्मि, मैं उस मुनि को प्रणाम करता हूं। यहां पर कहते मैं मुनि के गुरु को प्रणाम करता हूं। सुखदेव गोस्वामी मुनि के गुरु हो गए। पहले श्लोक में मंगलाचरण में सुखदेव गोस्वामी की जब जन्म की कथा कही, तो जन्म की सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही केवल मुनि थे। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो निरंतर 2400 घंटा भगवान की लीला का मनन करते रहते हैं, उसे मुनि कहते हैं। मुनि तो इस संसार में सब लोग हैं, सब लोग मनन करते हैं। बनिया भी मनन करता है, एक बिजनेसमैन भी मनन करता है, लेकिन अपने अपने घर का, अपने अपने धंधे का, बिजनेस का, लेकिन वास्तव में मुनि वह है जो भगवान की लीला का मनन करे। भगवान की लीला का निरंतर मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही मुनि थे, लेकिन यहाँ पर यह स्वानुभावम करुण्य कारुण्य करके वे इस भागवत का प्रचार किए, इसलिए कहते हैं गुरु मुनि नाम। तो जो मनन करते हैं, ऐसे मनन करने वालों के जो गुरु हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
तो इस प्रकार कहते हैं यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीप मति तितिश्यताम तमोन्धम संसारिणाम कारुण्य याह पुराण गुह्यम तम व्यास सुन मुपयामि गुरुम मुनीनाम। इस प्रकार से इस भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले सुध गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। मैं उस सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने ऐसा भागवत ग्रंथ दिया जिस भागवत ग्रंथ से इस संसार के जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर सके, अपने स्वरूप को जान सके। ऐसा ग्रंथ दिया जो सभी वेदों का सार है। ऐसा ग्रंथ दिया जो इस भौतिक संसार में अंधकार में पड़े रहने वाले लोग ये ग्रंथ पढ़कर अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान प्राप्त कर सके और करुण अपने करुण हृदय से ये पुराण गुह्य जो वेदों में सबसे गुह्य बात है वो सबसे गुह्य बात बताई। ऐसे मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। अब अगले श्लोक में भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान को प्रणाम करने के बाद मुनय साधु पृष्ठो अहम भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से भागवत की यह महिमा है, भागवत कहने वाले की महिमा है और भागवत सुनने वाले की भी कम महिमा नहीं है। तीन लोग ये भागवत सुनकर तीन लोग पवित्र होते हैं, भागवत कहने वाला, भागवत कराने वाला और भागवत सुनने वाला। तीनों का उद्धार पुनात ही तीन जन का उद्धार होता है। तो ये भागवत सुनना चाहिए और इसके साथ भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए और यही करते करते हम हमारे जीवन को उज्जवल कर सकते हैं और इस संसार में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। संसार में रहते हुए सभी कामनाओं को पूर्ण करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा वैसे तो हमारे इस कार्यक्रम का समय है 8:30 to 9:30 तक, लेकिन आज यह दूसरा प्रवचन है आज के दिन में मेरा। बांद्रा गया था, वहाँ से कहा आपको ट्रेन में आने लेट हो गया, धोती पकड़ कर आया लेकिन फिर भी दौड़ते दौड़ते, तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा समय 8:30 to 9:30। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट है?